بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ، صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی تلاوت ایوم اس کے انواع سے کریں گے۔ آج آپ پوتر قرآن مجید کے سورہ حجرات کی 12ویں اور 13ویں آیتوں کی تلاوت اور انواع سنیں گے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا صدق اللہ العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتین کرپاشیل اور دیاوان ہے، ہے ایمان لانے والو، بہت سی سوچوں سے بچو کہ کچھ سوچیں پاپ ہوتی ہیں، اور ٹوہ میں مت رہو، اور نہ تم میں سے کوئی پیٹ پیچھے کسی کی نندا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا ماس کھائے؟ تمہیں سوئم اس بات سے گھن آئے گی، اور ایشور سے ڈرتے رہو، نسندیہ ایشور توبہ سویکار کرنے والا اور دیاوان ہے۔ ہے لوگو، ہم نے تمہیں ایک پرش و استری سے پیدا کیا، اور تمہاری بہت سی جاتیاں اور ونش بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، निसंदेह ईश्वर की दृष्टि में तुम्हारे बीच सबसे अधिक प्रतिष्ठित वो है जो ईश्वर से सबसे अधिक भय रखता है। निसंदेह ईश्वर अत्यंत ज्ञानी और जानकार है।
ये रेडियो तहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9510 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। आज शुक्रवार है, शहरी वर्ग की 19, सफर की 3 और सितंबर की 10 तारीख। इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद राजनीतिक चर्चा, उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे पत्र संसार और अंतिम कार्यक्रम होगा विज्ञान की डगर। श्रोताओं, ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। अब आप सैयद मीसम से विश्व समाचार सुनिए। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। तेहरान का कहना है कि अरब देशों को ईरान के खिलाफ पुराना राग अलापने के बजाय इसराइल के अत्याचारों पर ध्यान देना चाहिए। इराकी कुर्दिस्तान में ईरान ने आतंकवादी ठिकानों पर आत्मघाती ड्रोन और स्मार्ट बमों से हमला किया है। अब दोगुनी संख्या में विदेशी जायरीन अरबईन पर इराक जा सकते हैं। अमेरिकी कंपनी फोर्ड ने भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद कर दिए हैं। अब आप विस्तार से विश्व समाचार सुनिए। 4 अरब देशों की समिति द्वारा ईरान विरोधी बयान जारी करने पर तेहरान ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि इन अरब देशों को मूल्यहीन बयान जारी करने के बजाय फिलिस्तीनियों पर इसराइल के अत्याचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खदीबजादे ने शुक्रवार को ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को लेकर ईरान विरोधी बयानबाजी को खारिज करते हुए कहा, इस तरह के बयानों से पता चलता है कि इन देशों को क्षेत्र के हालात की सही समझ नहीं है। गौरतलब है कि गुरुवार को मिस्र की राजधानी काहिरा में 4 अरब देशों मिस्र, सऊदी अरब, बहरीन और यूएई के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चिंता जताते हुए तुरंत रूप से परमाणु संयंत्रों के परीक्षण की मांग की गई थी। इसी तरह से इन अरब देशों ने ईरान पर दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के अपने पुराने आरोपों को दोहराते हुए तेहरान से मांग की है कि वो दूसरों के मामलों में दखल देना बंद करे। हालांकि ये वही अरब देश हैं जिन्होंने यमन में मिलकर एक अरब देश पर युद्ध थोप रखा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना था कि इस तरह के ईरान विरोधी बयानों का उद्देश्य ज़ायोनी शासन की सेवा करना है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लारोफ ने भी कहा है कि परमाणु समझौते में किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं है। रूस के विदेश मंत्री ने अपने ईरानी समकक्ष से टेलीफोन वार्ता में बल देकर कहा कि रूस भी ईरान की तरह परमाणु समझौते में किसी प्रकार के बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा और वो इस समझौते पर पूरी तरह अमल करने का आह्वान करता है। समाचार एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी विदेश मंत्री सरगेई लारूफ ने अपने ईरानी समकक्ष हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से टेलीफोन वार्ता में परमाणु विषय सहित परमाणु रुचि के विभिन्न विषयों के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया। इसी प्रकार इस वार्ता में ईरान के विदेश मंत्री ने स्पुतनिक वैक्सीन की अधिक आपूर्ति पर बल दिया और ईरानी छात्रों की कठिनाइयों को दूर करने के संबंध में रूसी प्रयास के प्रति आभार व्यक्त किया। ईरान की इस्लामी क्रांति सेना IRGC ने इराक के कुर्दिस्तान इलाके में आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया है। IRGC ने इराक के अर्ध स्वायत्ता प्राप्त इलाके में आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए गुरुवार को आत्मघाती और लड़ाकू ड्रोन विमानों के अलावा स्मार्ट और गाइडेड बमों का भी इस्तेमाल किया। इससे पहले IRGC कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पाकपुर ने कुर्दिस्तान की स्थानीय सरकार को चेतावनी दी थी कि वो अपनी धरती को ईरान विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की इजाजत नहीं दे। सोमवार को चेतावनी देते हुए ब्रिगेडियर जनरल पाकपुर ने कहा था कि ईरान के सीमावर्ती इलाकों में अशांति फैलाने के लिए आतंकवादी गुट इराक के उत्तरी इलाके कुर्दिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें इसकी अनुमति नहीं देंगे। ईरानी कमांडर ने आतंकवादी गुटों को भविष्य में भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है और स्थानीय आम लोगों से कहा है कि वे आतंकवादी ठिकानों से दूर ही रहें। बगदाद सरकार ने अरबईन के अवसर पर विदेशी जायरीन के लिए पूर्व निर्धारित वीजा की संख्या में दोगुना इजाफा करते हुए इसे 40,000 से 80,000 कर दिया है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक सफर के महीने की 20 तारीख को दुनिया भर के शिया मुसलमान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 40वां मनाते हैं और लाखों की संख्या में पवित्र शहर नजफ से करबला तक की 80 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर तय करते हैं, जिसे मिलियन मार्च कहा जाता है। लेकिन पिछले साल दुनिया भर में कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते इराक की सरकार ने विदेशी जायरीन के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इस साल कोरोना मामलों में कमी और वैक्सीनेशन के मद्देनजर एक सीमित तादाद में विदेशी जायरीन को यात्रा की इजाजत दी गई है। इराक के प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक अरबईन पर इराक की यात्रा करने वाले सभी विदेशी जायरीन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की शर्त है। इससे पहले इराक सरकार ने विदेशी जायरीन के लिए 40,000 वीजा जारी करने की संख्या निर्धारित की थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। अमेरिकी कंपनी फोर्ड ने नुकसान से तंग आकर आखिरकार भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद कर दिए हैं। इसके साथ ही पिछले 5 साल में भारत से फोर्ड, हार्ले डेविडसन, फिएट, मान, पोलारिस, जनरल मोटर्स और यूनाइटेड मोटर्स मोटरसाइकिल्स जैसी 7 कंपनियां भारत से अपना बोरिया बिस्तरा लपेट चुकी हैं। फोर्ड ने शुरुआत से ही भारत में दिक्कतों का सामना किया और वो कभी भी यहां मुनाफे में नहीं रही, क्योंकि भारत में वॉल्यूम सेगमेंट यानी छोटी कारों का जलवा है। फिलहाल भारत में फोर्ड डीलरशिप में कंपनी की महज 1,000 कारें बची हैं। पिछले कुछ वर्षों से फोर्ड की कारों की बिक्री काफी घट गई थी और इस वजह से कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था। फोर्ड मोटर कंपनी भारत में खुद को रिस्ट्रक्चर करना चाहती है, हालांकि रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में कम से कम 4,000 कर्मचारियों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान गुट ने 11 सितंबर को अमेरिका में आतंकवादी हमलों के दिन अपने मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन की खबरों को निराला झूठ करार दिया है। काबुल से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की सांस्कृतिक समिति के सदस्य انام اللہ سنگمانی نے شکروار کو کہا کہ 11 ستمبر کو طالبان کی نئی سرکار کے منتریوں کے شپتھ گرہن سماروہ کی خبریں نرادھار ہیں. سنگمانی نے کہا کچھ دن پہلے طالبان کی نئی سرکار کا شپتھ گرہن سماروہ آیوجت ہونا تھا لیکن کسی کارنوش اسے رد کر دیا گیا اور نئی سرکار اپنا کام کاج شروع کر چکی ہے. 15 اگست کو کابل پر نینترن کے بعد 7 ستمبر کو طالبان نے اپنی کیبنیٹ کا اعلان کیا تھا. ساتھ ہی اس بات پر بھی بل دیا تھا کہ یہ انترم سرکار ہے. اس بیچ طالبان نے پنجشیر استھت پورو اپ راشٹرپتی امر اللہ صالح کے گھر اور سمپتی کو ضبط کر لیا ہے. پورو راشٹرپتی اشرف غنی کے فرار ہونے کے بعد صالح نے پنجشیر کا رخ کیا تھا اور خود کو دیش کا راشٹری ادھیکش گھوشت کر دیا تھا. طالبان کا کہنا ہے کہ پورو اپ راشٹرپتی تاجکستان چلے گئے ہیں اور وہ اب دیش میں نہیں ہیں. طالبان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ صالح کے بھائی کی پنجشیر میں ایک جھڑپ کے دوران موت ہو گئی ہے. برٹین کی پرتیرکشا منتری نے کہا ہے کہ اگر طالبان افغانستان میں آتنکوادی گٹھوں کو ستہ ہاتھ میں لینے کے مارگ میں رکاوٹ نہیں بنے تو ان کا دیش افغانستان میں ڈرون حملہ کرنے کے لیے تیار ہے. اسکائی نیوز کی رپورٹ کے انوسار برٹین کی پرتیرکشا منتری نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ ہم اپنے ناگرکوں، اپنے ہتوں اور اپنے گھٹکوں کی رکشا کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں کریں گے. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا افغانستان سے ودیشی سینکوں کے نکلنے کے بعد آتنکوادی خطروں میں وردھی ہو گئی ہے تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ میرا ماننا ہے کہ انتراشٹری استر پر آتنکوادی خطروں میں وردھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ سمبھو ہے کہ بوکو حرام جیسے آتنکوادی گٹ طالبان سے پریرنا لے، البتہ خطرے بڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تکنیک میں وستار و پرگتی اور انٹرنیٹ کے مادھیم سے گیان کا استھانانترن نہ کیول خطرناک کاریوں کے لیے کچھ لوگوں کی پریرنا کا سروت بنا ہے بلکہ انہیں اس بات کی شکشا دیتا ہے کہ کس پرکار ان کاریوں کو انجام دیا جائے. روسی راشٹرپتی ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ اس سمے افغانستان میں اشانتی کی جو استھتی ہے اس کے لیے امریکہ ذمہ دار ہے. ہرنا کی رپورٹ کے انوسار گروار کو بھارت کی ادھیکشتا میں برکس نیتاؤں کی جو ورچوئل بیٹھک ہوئی اس میں ولادیمیر پوتین نے کہا کہ افغانستان سے امریکی اور اس کے گھٹک سینکوں کا نکلنا نئے سنکٹ کے استھتو میں آنے کا کارن بنا اور ابھی یہ گیات نہیں ہے کہ یہ کھیتری اور انتراشٹری پریورتنوں پر کس پرکار پربھاؤ ڈالے گا. اسی کے ساتھ ریڈیو طرح سے سماچار سماپت ہوئے.
یہ تہران ہے اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز.
راجنیتک چرچا.
راجنیتک چرچا کے ساتھ میں اختر رضوی آپ کی سیوا میں اپستھت ہوں. میرا سلام سویکار کریں. آج کے کارکرم میں ہماری چرچا کے وشے ہیں فرار فلسطینیوں کو نہیں ڈھونڈ پائے اسرائیلی،
اے مس بالاسرا،
افغانستان میں امریکہ اور یورپ کی پراجے پر جرمن میڈیا کی پرتکریا،
The nature of a Taliban-led government's relationship.
اور کشمیر میں طالبان کے وشے پر بیان دینے سے ہنگامے کا سلسلہ جاری.
جو صحیح بات ہے، جو اصل بات ہے، جو ہماری پریزیڈنٹ صاحبہ نے بیان دیا.
تو پہلے فلسطین کا وشے. لگاتار چھٹے دن بھی اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں اور سرکشا کرمی سب سے سخت سرکشا والی جیل سے فرار ہونے والے 6 فلسطینی قیدیوں کو ابھی تک تلاش نہیں کر سکی ہے۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں اور جاسوس لگاتار تلاش ابھیان جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو سفلتا نہیں مل رہی ہے، جبکہ فلسطینیوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ آئی آر آئی بی کے لیے خالد سبرنا کی رپورٹ، ساتھی محمد مہدی کی زبانی۔
للیوم الخامس،
لگاتار چھٹے دن بھی اسرائیل کے سرکشا کرمی اور خفیہ ایجنسی کے جاسوس اسرائیل کی سب سے بڑی سرکشا والی جیل سے فرار ہونے والے فلسطینیوں کو تلاش نہیں کر سکے۔ فلسطینیوں نے اس زبردست کامیابی پر اپنی جیت کا جشن منانے کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ اس کامیابی نے اسرائیل کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں، اور اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اسرائیل کی سرکشا ویوستھا کمزور ہے اور فلسطینیوں کے ارادے اسے پراجت کر سکتے ہیں۔ ایک فلسطینی ناگرک کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے جشن کا سلسلہ جاری ہے اور یہ دن پرتی دن بڑھتا ہی جائے گا۔ اس جشن پر اسرائیلی سینکوں نے حملہ بھی کیا۔ فلسطینیوں نے اسرائیل کو یہ سندیش دے دیا ہے کہ فلسطینی بندی، وشیش کر فرار ہونے والے فلسطینی بندی، ہماری ریڈ لائن ہیں۔
ہونا مدینہ،
یہ ویسٹ بینک کے علاقے جنین کا درشیہ ہے۔ اسرائیل کی جیل سے فرار ہونے والے بندیوں کا سمبندھ اسی شہر سے ہے۔ یہ 6 لوگ جہاد اسلامی کے سدسیہ ہیں اور اسرائیلی جیل سے فرار ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں نے اسی طرح اسرائیل کی جیلوں میں بند فلسطینیوں کے سمرتھن میں پردرشن کیے، جبکہ جیل میں لگاتار تیسرے دن بندیوں اور سرکشا کرمیوں کے بیچ جھڑپیں جاری ہیں، جبکہ جیل کی کئی کوٹھریوں کو آگ بھی لگا دیا گیا۔ ہم اسرائیل کو یہ چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آج کسی بھی فلسطینی کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کی قیمت چکائے گا۔ ہمارا راشٹر اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اس کے سنکلپ اسرائیلی شاسن کے ہتھیاروں سے مضبوط ہیں۔ فلسطینی جنتا کے بیچ خوشی، ہرش اور جشن کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ فلسطینی بندیوں نے اسرائیلیوں کی وشوسنیتا پر بٹا لگا دیا ہے۔ خالد سبرنا، IRIB نیوز، فلسطین۔
جرمنی کی ایک پترکا نے امریکہ اور یورپ کی افغانستان میں لجا جنک پراجے پر مذاق اڑاتے ہوئے لکھا ہے کہ ہارے ہوئے لوگ طالبان کے سامنے کیسے شرط رکھ سکتے ہیں۔ یہ بیان ایسی استھتی میں آیا ہے کہ امریکہ اور جرمنی کے ودیش منتریوں نے ایک بیٹھک کے بعد طالبان کے سامنے شرط رکھی ہے۔ برلن سے IRIB کے لیے امیر شجائی کی رپورٹ، ساتھی سید میسم کی زبانی۔
جرمنی کی دسائٹ پترکا نے لکھا ہے کہ ہم سب ہارنے والے ہیں اور ہم سب کو افغانستان میں اپنی سینا پراجے کو کھل کر سویکار کرنا چاہیے۔ یہ بات افغانستان کے بارے میں امریکہ اور جرمنی کے ودیش منتریوں کی بیٹھک کے ایک دن بعد پرکاشت ہوئی ہے، جبکہ ہائیکو ماس اور بلنکن نے افغانستان کے نئے ستہ دھاریوں کے لیے کچھ شرطیں رکھی ہیں۔ ہم طالبان سے اپیل کرتے ہیں کہ افغانستان دوبارہ سے آتنکوادیوں کے گڑھ میں بدل لینا پائے۔ طالبان سرکار کے ساتھ ہمارے اور وشو سمودائے کے سمبندھ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں ان کے برتاؤ پر نربھر کریں گے۔ طالبان کے لیے جو شرطیں رکھی گئی ہیں ان کا جرمن پترکا نے مذاق اڑایا ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں طالبان کے لیے شرطیں رکھنے والے، جبکہ ہم میدان میں بازی ہار چکے ہیں۔ جرمن ٹیکہ کار ماتیا چیروسکو کا کہنا ہے، افغانستان میں سینیا اپستھتی 20 سال کے بعد ختم ہو گئی اور دنیا کی سب سے بڑی شکتی کے روپ میں امریکہ تتھا ناٹو کے سدسیہ دیشوں نے لجا جنک پراجے کا سامنا کیا۔ واستو میں امریکہ کی سینیا پراجے ایک بار پھر ویتنام کی جنگ کے بعد سامنے آئی۔ ٹیکہ کاروں کے انوسار افغانستان میں ناٹو کی پراجے کی وجہ سے ناٹو کی چھوی خراب ہوئی ہے۔ جرمن میڈیا نے جرمن ودیش منترالے اور امریکہ کی اور سے طالبان کے لیے رکھی گئی شرطوں کو پراجے سے پہلے کی یوجنا قرار دیا، جیسا کہ افغانستان میں 20 سال کی سینیا اپستھتی پراجت ہوئی ہے۔ امیر شجائی، IRIB نیوز، برلن۔
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
भारत नियंत्रित कश्मीर में जहां हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके निष्ठावान साथियों का शोक मनाए जाने का सिलसिला जारी है, वहीं राजनीतिक स्तर पर कश्मीरी नेताओं द्वारा दिए गए बयान पर भाजपा की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जहां भाजपा ने कश्मीरी नेताओं की आलोचना की है, वहीं कश्मीरी नेताओं ने भाजपा की आलोचना पर और अपने नेता के बयान पर सफाई पेश की है। विस्तृत रिपोर्ट के साथ श्रीनगर से हमारे साथी सिप्ते मोहम्मद हसन।
भारत प्रशासित कश्मीर में मुहर्रम अल हराम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शोक सभाएं और जुलूसों का क्रम जारी है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बडगाम के मागाम में इस हवाले से एक बड़ी सभा आयोजित हुई, जिसमें घाटी के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफका की कुर्बानी को लेकर नवाखानी और सीना कोबी कर रहे थे। इस अवसर पर आजादारों ने उन कुतों के विरोध में भी जोरदार नारे बुलंद किए जो इस समय भी इस्लाम के विरोध में उठ खड़े हुए हैं। इस जुलूस में युवकों का जज्बा दीदनी था। इस बीच जम्मू कश्मीर में भाजपा ने कहा है कि पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, तालिबान को लेके जो वो वक्तव्य जारी करते हैं उससे अच्छे संकेत नहीं मिलेंगे। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि भारत प्रशासित कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अफगानिस्तान में अब जबकि तालिबान ने प्रशासन संभाला है और हम उनसे ये आह्वान करते हैं कि वो अपना पिछला चरण भूल जाएं और इस समय वो ऐसी सरकार सामने लाएं जिसमें तमाम लोगों का ख्याल रखा जाए। जिस पर भाजपा ने कहा है कि ये लोग तालिबान का समर्थन करके अपनी नीति बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है और इसका समर्थन करना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। भाजपा के एक नेता अल्ताफ ठाकुर ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा,
देखिए चाहे फारूक साहब हो चाहे महबूबा जी, उनका हमेशा तालिबान को प्रेज करना इस बात को दर्शाता है कि उनकी मानसिकता जो है वो तालिबान से कुछ अलग नहीं। अब जो तालिबान और जो अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर को कंपेयर करना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या महबूबा जी अगर आप उनको प्रेज करती है तो मुझे बताइए क्या आप कश्मीर में पॉलिटिक्स जारी रख सकते हो।
इस बीच पीडीपी के महासचिव गुलाम नबी हांजोरा ने कहा कि हमने जिस कंटेस्ट में ये बात कही है वो समझने की जरूरत है। उन्होंने भी इस हवाले से अपना वक्तव्य जारी करते हुए कहा,
जो सही बात है, जो असल बात है, जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने बयान दिया, उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अगर यहाँ के हिंदुस्तान के जो सरकार इस वक्त चल रही है ये अफगानिस्तान में बात कर रहे हैं अफगानिस्तान कौम की, अफगानिस्तान के अवाम की, तो कश्मीर के अवाम के साथ ये इम्तियाज क्यों बरतते, कश्मीर के अवाम को ये रोनते क्यों हैं, इनको कश्मीर के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, इनको एक जेल में क्यों बंद किया गया है।
इस बीच जम्मू कश्मीर में हिंसक घटनाओं का क्रम भी जारी है। श्रीनगर के मेन क्षेत्र छानपोरा में एक हथगोले के आक्रमण में एक सुरक्षाकर्मी और एक महिला के घायल होने के समाचार हैं। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने एक बहुत बड़े क्षेत्र का घेराव किया है और तलाशी अभियान आरंभ किया है जो आखिरी सूचना आने तक जारी था। सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारी आज की इस सभा के अंत में आप सुनेंगे कार्यक्रम विज्ञान की डगर, किंतु उससे पहले प्रस्तुत है आपका मनपसंद कार्यक्रम पत्र संसार।
पत्र संसार।
दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है। अपनी दीदी मरियम मेहर दादी और भैया अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
श्रोताओं, में आशा है कि आप सकुशल होंगे और कार्यक्रम पत्र संसार सुनने के लिए तैयार होंगे।
और आज भी हम ईमेल और कमेंट्स शामिल कर रहे हैं। पत्र भी बहुत ही कम आ रहे हैं, तो सिर्फ ईमेल और कमेंट्स हैं और बाकी दूसरे प्रोग्राम। तो सबसे पहले मौला राम गंधवीर का ईमेल है। लिखते हैं कि मैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का नियमित श्रोता हूं। आपके रेडियो के सभी कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आते हैं। पत्र संसार, राजनीतिक चर्चा, इसके अलावा दैनिक कार्यक्रम, आज के इतिहास भी मुझे काफ़ी पसंद है। लंबे समय से आपकी ओर से कोई सामग्री नहीं मिल रही है। प्लीज़ मेरी फरमाइश के लिए कुछ गिफ्ट भेजें। कृपया रिस्पॉन्स दें ताकि मैं अपना विस्तृत डाक पता आपको भेज सकूं।
बहुत बहुत धन्यवाद मुलाराम गंधवीर।
एक बात बताऊं भैया, अभी तक सभी को हमारे पत्रिका का इंतजार है
जी।
और जो अभी मुमकिन नहीं,
हमने एक कार्यक्रम में इसके बारे में बताया था कि परिस्थितियां कुछ इस तरह से बनी कि जिसकी वजह से पत्रिका का प्रकाशन रोकना पड़ा। और अब तक हालांकि हमें भी हमारी कोशिश और दिलचस्पी ये थी कि पत्रिका का प्रकाशन जारी रहे, लेकिन वो नई परिस्थितियों में और जिस तरह से ज़्यादा ध्यान आकर्षित हुआ है दूसरे आयामों पर, सोशल मीडिया पर, वेबसाइट पर, इस तरह के जो बदलाव आए हैं उसकी वजह से पत्रिका का प्रकाशन जारी रख पाना संभव नहीं था। तो हम इसके लिए तो इनसे
व्हाट्सएप पे ही अभी हो सके तो इनको देखना होगा, उसमें हम लोग भेजते ही हैं। वेबसाइट पे हमारे होता ही है, जैसे ईरान
बेशक है। अगर हमारी वेबसाइट का अध्ययन कर सके गंधवीर जी तो काफी कुछ मिलेगा
जी,
और आसानी से मिलेगा और अपडेटेड मिलेगा। ये भी एक ध्यान योग्य बात है कि पत्रिका में जो विषय वस्तु हुआ करती थी उसका अधिकांश हिस्सा, अगर हम सारा नहीं कहेंगे तो भी अधिकांश हिस्सा वेबसाइट पर मिल सकेगा और आसानी से उसका अध्ययन कर सकेंगे। फिलहाल उसके लिए हमें खेद है कि पत्रिका भेजना संभव नहीं होगा
जी। लखनऊ से अली असगर लिखते हैं कि व्हाट्सएप पर मैंने लिख भेजा है, आपके यहाँ से प्रसारित मुहर्रम पर जो कार्यक्रम है वो मुझे और मेरे परिवार वालों को बहुत पसंद है। रेडियो तेहरान से हमें करबला की घटनाओं का सुंदर वर्णन सुनने को मिलता है, ऐसा प्रतीत होता है कि हम स्वयं वहाँ पर मौजूद हैं। अच्छी प्रस्तुति हेतु हम आपके शुक्रगुजार हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस टिप्पणी के लिए, कार्यक्रमों को ध्यान से सुनने के लिए, और हमारे लिए खुशी की बात है कि कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं। करबला की घटना और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आंदोलन एक ऐसी घटना और एक ऐसा आंदोलन है जो हमेशा अमर रहने वाला है। इसमें पाठ हैं, इसमें ज़िंदगी जीने का क्या तरीका हो सकता है, इसके लिए सबक मौजूद है, इसमें शिक्षाएँ हैं, इसमें उसूल बयान किए गए हैं। तो इन पे जितनी बात की जाए, इनकी जितनी व्याख्या की जाए कम है, हमेशा नए आयाम, नए पहलू सामने आते ही रहते हैं। हमारे लिए खुशी की बात है कि ये प्रयास पसंद आया। पहले ब्रेक के बाद श्रोताओं, दीदी ज़्यादातर ये होता है कि कोई संस्कृति से जुड़ी खबर सुनाती हैं, तो देखते हैं कि आज के लिए क्या खबर चुनी है दीदी।
आज मैं एक छोटी सी खबर लेके आई हूँ। ये हम ईरान के खुरासान जा रहे हैं
जी। तो
ईरान के उत्तरी खुरासान के उत्तर पूर्वी प्रांत में रुयन नामक एक गाँव है जो तैमूर युग से पहले का है
जी।
और इस गाँव में करीब 800 घर हैं। गांव में पुरुष अक्सर खेती या बागों में के माध्यम से अपना गुजारा करते हैं
जी।
और महिलाएं 400 साल पहले की अपनी पुश्तैनी पारंपरिक कपड़ा बुनने का काम करती हैं। रुयन में बुने गए वस्त्रों में विभिन्न प्रकार के पैकिंग के लिए बनाए गए कपड़े, तौलिए, रुमाल, चादरें और शर्ट बनाने के लिए कपड़ा आदि शामिल हैं।
जी,
लगभग 300 ग्रामीण सीधे तौर पर धागा उपलब्ध कराते हैं और साथ ही साथ कपड़ों की रंगाई करना, बुनाई और पैकिंग के लिए कपड़ा बनाना जैसे कामों में व्यस्त हैं। उन्हें पैकिंग या रैपर बुनाई या पारंपरिक कपड़ा कार्य के क्षेत्र में यूनेस्को की मौलिकता की मोहर प्राप्त है।
दिलचस्प खबर है दीदी। और श्रोताओं, बारी है आपके कमेंट्स की, तो देखते हैं कि दीदी ने आज के कार्यक्रम के लिए क्या कमेंट्स चुने हैं।
जी, यमनी मिसाइलें सऊदी गठबंधन के सैन्य अड्डे पर कहर बनकर बरसी, 30 एजेंट हुए ढेर, दसियों घायल। इस पर अहमद लिखते हैं, कमाल की खबर है, अल सऊद वहाबी भयानक देशद्रोही और विश्वासघाती आतंकवादी अपराधियों और गैंगस्टरों को उनके दुष्ट भाड़े के सैनिकों के साथ हरा दिया जाएगा और पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। बहादुर यमन को पूरी तरह मुक्त कर दिया जाएगा और कब्जाधारियों को निष्कासित कर दिया जाएगा।
ये टिप्पणी जाहिर है भावना के साथ है, चूँकि लोगों की भावनाएं यमन की मजलूम जनता के साथ है। यमन एक गरीब देश है और सऊदी अरब ने पूरी ताकत झोंक दी यमन को तबाह करने के लिए, तो दुनिया के लोगों के हृदय यमन की जनता के साथ हैं और यमन की जनता का लोग समर्थन करते हैं। सऊदी अरब ने ये दर हकीकत बहुत बड़ी गलती इस तरह से की है, एक तो ये कि पड़ोसी देश को भारी नुकसान पहुंचाया है, दूसरे ये कि खुद को बहुत नुकसान पहुंचाया है, चूँकि सऊदी अरब का मिशन पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। सऊदी अरब का एक ही मूल लक्ष्य था और वो ये कि अपनी पसंद की सरकार सनआ में बिठा दे। जाहिर है कि सऊदी अरब की इस कोशिश को कामयाबी नहीं मिलने वाली थी, इसका अंदाज़ा पहले ही लोगों को हो चुका था। यमन भी उन देशों में है जहां बाहरी हमला और कब्ज़ा कभी भी कामयाब नहीं हो सका है, तो उसी का नतीजा आज हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब बुरी तरह से फंसा हुआ है यमन में, न जंग रोक पा रहा है और न जंग जारी रख पाना उसके बस की बात रह गई है।
लेबनान के लिए ईरान द्वारा तेल सप्लाई में रुकावट डालने की हिमाकत न करे अमेरिका, इस पर मोहम्मद मोहिद्दीन लिखते हैं, लेबनान को उसकी वर्तमान वित्तीय और ईंधन समस्याओं को दूर करने में मदद करने के लिए किसी भी देश का स्वागत है। ईरान जरूरतमंद लोगों की अच्छी सेवा कर रहा है, जबकि अमरीकी आधिपत्य प्रणाली उन देशों का गला घोंटती है जो उसकी पुरानी नीतियों का विरोध करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अमेरिका भविष्य में और अधिक सुधर जाए। हिटलर इतना घमंडी था और उसके साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है, इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए।
बिल्कुल सही बात है और लेबनान का मुद्दा वाकई दीदी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
जी,
लेबनान छोटा सा देश है, बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, लेकिन देश ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए आप देखिए कि खबरों में बहुत रहता है।
जी,
लेबनान के साथ ये हुआ है कि अमेरिका, इसराइल और उनके घटकों की ओर से कोशिश ये हो रही है कि लेबनान में एक तो ये कि सरकार ना बनने पाए। ये महीनों गुजर गए कि लेबनान में कोई सरकार नहीं है, कोई बाकायदा शासन नहीं चल पा रहा है वहाँ का, और इसकी वजह यह है कि बाहरी हस्तक्षेप हो जाता है, सरकार कभी होती है वो गिर जाती है और कभी बनने की प्रक्रिया में रुकावट पड़ जाती है। एक तरफ ये राजनीतिक संकट है, दूसरी ओर अमेरिका, इसराइल और उनके घटकों की ओर से आर्थिक संकट पैदा कर दिया गया लेबनान में बहुत बुरी तरह से, जिससे लोगों पर बहुत गंभीर रूप से असर पड़ा है। ये सब चल रहा था कि इस बीच में ईंधन का एक बहुत बड़ा संकट पैदा कर दिया गया, जिसके नतीजे में ये हो गया कि वहाँ पर अस्पतालों तक की, यानी वो ईंधन जिससे बिजली बनती थी वो कम पड़ गया, तो अस्पतालों की बिजली कट गई। इसके अलावा वो बेकरी जहाँ पर रोटियाँ, वहाँ जाहिर घरों में रोटियाँ उस तरह से नहीं बनती बल्कि बेकरी से लोग रोटियाँ खरीद के खाते हैं, तो बेकरी की बिजली कट गई और वहाँ का ईंधन सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो रोटियाँ नहीं पक पा रही हैं। इस तरह की सिचुएशन क्यों है, ताकि कोशिश यह है कि लोगों में एक उफान पैदा हो जाए, एक अस्त व्यस्त और एक अराजकता फैल जाए पूरे लेबनान में, ताकि वहाँ पर अमेरिका और इसराइल अपनी मर्जी के लोगों को, यानी वही यमन में जो सऊदी अरब करना चाहता है, वो सत्ता में ला सके। लेकिन अब तक ये है कि लेबनान ने प्रतिरोध किया है और आगे भी प्रतिरोध करता रहेगा। और अब बारी है कि किसी श्रोता के विचार सुने जाएं।
जी, ये है हमारे बहुत ही अच्छे श्रोता धीरज प्रजापति।
नमस्ते, गुड मॉर्निंग, मैं धीरज प्रजापति। आपका समाचार जो सुने, राजनीतिक चर्चा और इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार, वो हमको बहुत अच्छा लगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दो बार रह चुके कल्याण सिंह का निधन हो चुका है शनिवार को, और वो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे 2019 में सितंबर तक। तो बहुत दुख की बात है ऐसा हुआ, 89 वर्ष के थे। हालांकि एक दिन आना तो जाना सबका है, मगर जो अपने देश के लिए कोई योगदान देकर जाए या कोई पहल शुरू करके जाए तो उसको याद तो करना बनता है। आने वाले दिनों में ऐसे ही भारत सरकार अभी जो तत्कालीन में है वर्तमान में, वो ज़रूर उनके दिखाए मार्गों पर चलने की कृपा कष्ट करेगी। मैं एक बात के लिए क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा सा वॉइस, मेरे फ़ोन का टॉक बैक है ना, जो क्योंकि हम दिखाई देता है, ब्लाइंड पर्सन हैं, तो ये वॉइस के लिए क्षमा चाहते हैं, इसका ध्यान दें। मैं धन्यवाद।
तो ये हमारे बहुत ही अच्छे श्रोता थे धीरज कुमार
प्रजापति
जी।
तो भैया, अभी हमारे पास समय नहीं है, तो मैं थोड़े से अपने पते और ईमेल आईडी बता दूं।
जी,
हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsiribir, और हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। तो इसी के साथ ये सभा यहीं पर समाप्त होती है। मुझे मरियम मेरदादी और भैया अहमद अब्बास को अनुमति दीजिए। खुदा
हाफिज। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। विज्ञान की डगर।
दोस्तों विज्ञान की डगर के करने कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में हम शारीरिक असामान्यता का पता लगाने वाला उपकरण और बाल गिरने के उपचार के विषय पर चर्चा करेंगे। मरियम मेहर दादी और गायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ईरानी वैज्ञानिक शारीरिक असामान्यता का पता लगाने वाले उपकरण की खोज करने में सफल रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इंफ्रारेड वेव्स की मदद से ये उपकरण बनाने में सफलता हासिल की है। इंफ्रारेड विकिरण या रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक प्रकार है जो वस्तुओं के गर्म होने पर उत्सर्जित होता है, लेकिन विजिबल लाइट को उत्सर्जित करने के लिए पर्याप्त गर्म नहीं होता।
ये परियोजना अर्ध औद्योगिक उत्पादन के चरण में है और इसका पंजीकरण भी कर लिया गया है। बताया जाता है कि बोन मैरो की समस्याओं का पता लगाने और कमर दर्द व कमर में पैदा होने वाले झुकाव की असल वजह का पता लगाता है। बोन मैरो स्पंज जैसा टिश्यू होता है जो हमारे कुछ हड्डियों के अंदर होता है। इंसानों में ये कुल्हे, जांग आदि की हड्डियों में मौजूद होता है। बोन मैरो वो टिश्यू होता है जहां स्टेम कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाओं, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स में विकसित हो सकती हैं, जो सभी शरीर में विशिष्ट काम करते हैं।
बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन BMT या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक प्रक्रिया है जिसमें रोगग्रस्त या क्षतिग्रस्त बोन मैरो के स्थान पर एक स्वस्थ रक्त उत्पाद बोन मैरो को प्रतिस्थापित किया जाता है। इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब आपकी बोन मैरो ठीक तरह से काम करना बंद कर दे और पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का उत्पादन न करे। बोन मैरो ट्रांसप्लांट दो तरह से होता है, एक तो जिसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाना है उसी के अपने शरीर से रक्त कोशिकाएं लेकर उनका प्रत्यारोपण, और दूसरा किसी दूसरे के शरीर से रक्त कोशिकाएं लेकर उनका प्रत्यारोपण। पहले प्रकार को ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट और दूसरे प्रकार को एलोजेनिक ट्रांसप्लांट कहते हैं।
इस शैली में रिफाइंडर विकिरण को पेन की नोक या कैमरे के द्वारा मरीज के 1 मीटर की दूरी पर रखते हैं और उसके बाद एक विशेष पेंसिल द्वारा शरीर पर निशान लगाया जाता है और फिर उसके टूटे हुए हिस्से कैमरे में आ जाते हैं और फिर मशीन द्वारा टूटे हुए भाग की मरम्मत की जाती है और बाद में उस हिस्से की फिजियोथेरेपी होती है। ये ईरान के वैज्ञानिकों ने अपनी मेहनत से कर दिखाया है और उन्होंने स्थानीय संसाधनों की मदद से ये कारनामा कर दिखाया। दोस्तों ईरानी वैज्ञानिकों और तेहरान विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक इलेक्ट्रॉनिक नैनो उपकरण बनाकर दूसरी कोशिकाओं में कैंसर फैलने से रोकने की एक नई शैली का आविष्कार किया। इस उपकरण द्वारा कैंसर फैलने की रफ्तार पर भी नज़र रखी जाती है और विशेषज्ञों ने कैंसर के फैलाव को रोकने में इस उपकरण को महत्वपूर्ण करार दिया है, क्योंकि जब कैंसर के फैलाव या उसकी रफ्तार को देखकर उस पर लगाम लगाई जा सकती है और इसे कैंसर के उपचार में मदद मिलेगी।
वर्तमान समय में कैंसर की कोशिकाओं के फैलने की पहचान के लिए कई शैलियां मौजूद हैं जिनमें से ज़्यादातर कम अहम और लंबा टाइम लेने वाली हैं, लेकिन ईरानी विशेषज्ञों ने हाल में कैंसर के दूसरी कोशिकाओं में फैलने की रफ्तार और तरीके को जानने के लिए एक यंत्र बनाया है जिससे कैंसर की रोकथाम में काफ़ी मदद मिल रही है। इस यंत्र के बनाने वालों का कहना है कि ये यंत्र ब्रेस्ट कैंसर की कोशिकाओं को पकड़ने का बेहतरीन तरीका है।
आम तौर पर ब्रेस्ट कैंसर को सी शब्द से परिभाषित किया जाता है, एक ऐसा शब्द जो सबके लिए चिंता का कारण है। महिलाओं के लिए स्तन कैंसर एक बड़ी समस्या है। स्तन कैंसर के मामले देर से पता लगाने के कारण मृत्यु दर बढ़ रही है। अधिकांश विकसित और विकासशील देशों में जागरूकता फैलाने के लिए काफ़ी कुछ करना है। जीन में म्यूटेशन की वजह से स्तन की कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, इसे कोई भी आबादी और नस्ल नहीं बच सकती। WHO द्वारा स्तन कैंसर के मामलों पर दुनिया भर में दिखाए आंकड़ों में ये कहा गया है कि ये महिलाओं में कैंसर का सबसे साधारण रूप है। अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों में मामलों की दर उत्तरी अमेरिका और यूरोप की तुलना में कम थी, हालांकि जीवित रहने की दर अलग अलग रही है।
दुर्भाग्य से ये ध्यान देने की जरूरत है, हालांकि अफ्रीका और मध्य पूर्व के मामलों की दर कम होने पर भी दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में जीवित रहने की दर कम है। शुरुआती पहचान और जागरूकता की कमी जीवित रहने की दर को कम करने के मुख्य कारणों के रूप में देखा गया है। ये समस्या विकासशील देशों में बढ़ती दरों के साथ और भी मुश्किल हो गई है। स्तन कैंसर के बारे में जागरूकता के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और चिकित्सकों पर भरोसा किया जाता है। स्तन कैंसर कोशिकाओं की अनियंत्रित बढ़ोतरी है, आमतौर पर लोब्यूल्स और दुग्ध नलिकाओं में घुसकर वे स्वस्थ कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं और शरीर के अन्य भागों में फैल जाते हैं। कुछ मामलों में स्तन कैंसर स्तन के अन्य ऊतकों को भी प्रभावित करते हैं।
दोस्तों, ये शैली प्रचलित शैली के हिसाब से थोड़ा हटकर है, लेकिन ये आम शैली से थोड़ा महंगा है और समय भी लेता है और ये ज़्यादा सूक्ष्म भी नहीं है। लेकिन इस योजना पर बनी किट बनने वाली कैंसर की एक एक कोशिका की भी पहचान करती है, लेकिन कुछ नमूनों की समीक्षा करने के बाद कैंसर की कोशिकाओं की पहचान हो जाती है और प्रचलित शैली द्वारा निगेटिव आए परिणाम को ये नया यंत्र पॉजिटिव किया गया है। कैंसर किसी कोशिका के असामान्य तरीके से बढ़ने की बीमारी है। आमतौर पर हमारे शरीर की कोशिकाएं नियंत्रित तरीके से बढ़ती हैं और विभाजित होती हैं। जब सामान्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है या कोशिकाएं पुरानी हो जाती हैं तो वे मर जाती हैं और उनकी जगह स्वस्थ कोशिकाएं ले लेती हैं। कैंसर में कोशिका के विकास को नियंत्रित करने वाले संकेत ठीक से काम नहीं करते हैं। कैंसर की कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं और जब उन्हें रुकना चाहिए तो कई गुना बढ़ जाती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कैंसर कोशिकाएं स्वस्थ कोशिकाओं वाले नियमों का पालन नहीं करती हैं।
हर एक कोशिका ऐसे जीन से नियंत्रित होती है जो कोशिकाओं को निर्देश देते हैं कि उन्हें कैसे काम करना है, कब बढ़ना है और कब विभाजित होना है। कैंसर शरीर की अपनी ही कोशिकाओं से विकसित होता है। किसी एक कोशिका के जीन के भीतर आने वाले बदलाव के साथ ही साथ इसकी शुरुआत होती है। अनुवांशिक बदलाव या म्यूटेशन अर्थात कोशिका में आने वाली तब्दीली या हेरफेर किसी कोशिका के सामान्य कार्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं। ज़्यादातर तब्दीलियां नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन कभी कभी ये कोशिका के विकास को नियंत्रित करने में अड़चनें पैदा कर देती हैं।
ऐसा कभी कभार ही होता है कि जीन में बदलाव सिर्फ इसलिए आए क्योंकि माता पिता के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ज़्यादातर हेरफेर अनायास होते हैं, वो भी तब जब कोशिकाएं अलग अलग हिस्सों में बनती हैं। इतना ही नहीं, ये फेरबदल गलती से होते हैं और अचानक होते हैं। बड़ों को होने वाले कैंसर के उलट बच्चों को होने वाले कैंसर की वजह जिंदगी जीने के तौर तरीके या पर्यावरण नहीं होते हैं, बल्कि बच्चों को होने वाले कैंसर के ज़्यादातर मामले जीन में आने वाली तब्दीली का नतीजा होते हैं जो कि इत्तेफाक से होता है। कैंसर शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर उस सेल या टिश्यू के लिए किया जाता है जहाँ ये शुरू होता है। بچوں میں الگ الگ طرح کے لگ بھگ 100 سے زیادہ کئی کینسر ہوتے ہیں. کوشکائیں مائکروسکوپ میں کیسے دکھتی ہیں اور کوشکاؤں کے آنوک اور انوانچک وشیشتائیں کینسر کے وشیش پرکار کو نردھارت کرنے میں مدد کرنے کے لیے جانکاری دیتی ہیں.
दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में हमने आपको बाल गिरने के उपचार के बारे में बताया था. इंडियाना पुलिस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने स्टेम सेल की मदद से खराब कोशिकाओं की मरम्मत के बारे में ज़बरदस्त सफलता हासिल की है. बालों का झड़ना या हेयर फॉल प्रॉब्लम एक आम समस्या बन गई है. इसका जल्द से जल्द इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है. आजकल लोगों की जीवन शैली और खान पान اتنی بری ہو گئی ہے کہ اس کا سیدھا اثر بالوں پر ہی پڑتا ہے. اوپر سے پردوشن اور ہیئر پروڈکٹ کے کیمیکل کے کارن بھی بالوں پر اثر پڑتا ہے جو بعد میں بالوں کے جھڑنے کا کارن بنتا ہے. بال اگر عام کارنوں سے گر رہے ہوتے ہیں تو گھریلو نسخے بہت کام آتے ہیں. آپ بالوں کو جھڑنے سے روکنے کے اپائے یا علاج کرنے میں جتنی دیر کریں گے اتنی ہی تیزی سے بال جھڑتے جائیں گے. اصل میں بالوں کے گرنے کی سمسیا کو لوگ پہلے نظر انداز کرتے ہیں, اس لیے صحیح سمے پر اس کا علاج نہیں ہو پاتا. دوستوں, کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے. آپ سے انمتی چاہتے ہیں.
شروتاؤں, یہ پرسارن آپ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا سے سن رہے ہیں. تازہ اور وسط خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے. ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.ir/hi. اسی کے ساتھ یہ سبھا یہیں پر سمپن ہوتی ہے. اب ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. ۔